हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विहा की बात सुनकर अंजलि हैरान हो चुकी थी। उसने हैरानी से कहा, तुम्हारी दीदी से शादी की है रूहान ने? विहा बेंच से उठते हुए बोली, अब इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं दे सकती, आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। फिलहाल मुझे वापस जाना है, लंच ब्रेक खत्म हो चुका है। और वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे अंजलि अब बहुत चिपकू लग रही थी, जो बार बार उसके आसपास भटक कर उसका दिमाग खराब कर रही थी। विहा क्लास के अंदर जाते हुए बोली, एक तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट है ही, ये ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, मुझे अपनी भ्रष्ट बुद्धि यूज करनी पड़ती है। भगवान जी, थोड़ा सा दिमाग दे दो ना मेरे अंदर, इतनी इमोशन इमोशन भर दिए हैं, अब लगता है मेरी पूरी जिंदगी में इमोशनल फूल बनकर ही रह जाऊंगी, जिसे देखो वही मेरी इमोशन का फायदा उठाने लगता है। दूसरी तरफ निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में अनाही एक फाइल लिए वेदांत को कुछ समझा रही थी, पर वेदांत का ध्यान पता नहीं कहाँ था। वो पेपर वेट को हाथों में घुमाते हुए बस धीरे धीरे अपना सर हिला रहा था, जिसे देखकर अनाही ने लास्ट में गुस्से में कहा, सर मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? मैं तीन बार एक ही चीज रिपीट कर चुकी हूँ, उसके बावजूद आप सर हिलाए जा रहे हैं। शायद रूहान का गुस्सा फिलहाल वेदांत पर निकल रहा था, और इस बात का अंदाज़ा अनाही को बिल्कुल नहीं था। वही वेदांत बिल्कुल चिहोंक उठा था, वो अपनी किसी गहरी सोच में गुम था, और उसने सच में अनाही को इग्नोर कर रखा था। उसने जल्दी से अपना गला सही करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी अनाही, तुम्हारी वो पिद्दी सी बहन मेरे दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही है। वो इतनी अजीब अजीब बातें करती है कि मुझे लगता है उसका दिमाग घुटनों से निकलकर टखनों में चला गया है, और अब 24 घंटे मेरे दिमाग में वही किसी घंटी की तरह बजती रहती है। और आज मैंने इतना रोका था कि उसकी तबीयत खराब है, कॉलेज मत जाओ कॉलेज मत जाओ, और कॉलेज चली गई। अभी मुझे टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। अनाही ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल जल्दी से टेबल पर रखते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी तबीयत खराब थी? मुझे पता है उसके मूड स्विंग्स के बारे में, वो आधी पागल है, और अब पता नहीं कैसे वो पूरा दिन अकेली रहेगी, क्योंकि आज रूहान जी भी कॉलेज नहीं गए हैं। ये सुनकर वेदांत और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठते हुए बोला, ओह गॉड, मुझे लगा रूहान गया होगा कॉलेज, मुझे वापस जाना है, प्लीज तुम संभाल लेना, और जल्दी, शायद रूहान भी कॉलेज नहीं गया तो ऑफिस ही आएगा, तुम दोनों मिलकर आज पूरा ऑफिस देख लेना, मुझे जाने दो, फिर ना शाम को वो मेरी जान खाएगा अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अनाही ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, और वेदांत तेज कदमों से चलता हुआ वहाँ से चला गया। वेदांत जैसे ही ऑफिस से निकल रहा था, उसे रूहान मिल गया, जो अपनी शर्ट को ठीक करते हुए खुद को परफेक्ट बना रहा था, शायद अपनी मैडम जी के लिए। वेदांत को देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली, जिससे वेदांत को काफी बुरा लगा, लेकिन फिलहाल वो रूहान से कुछ नहीं कहना चाहता था, तो तेज कदमों से वहाँ से चला गया, और रूहान भी अंदर आ गया। अनाही जो परेशानी से वेदांत के कैबिन से निकलकर अपने कैबिन में जा रही थी, अचानक ही रूहान उसके सामने आ गया, और अनाही डरते हुए दो कदम पीछे हटकर बोली, रूहान जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। रूहान ने एकदम से आंखें छोटी करते हुए कहा, आज से पहले तो आप कभी ऐसे नहीं डरी। अनाही ने हल्के गुस्से में कहा, आज से पहले मैं भी नहीं जानती थी ना कि मेरे पति कैसे हैं, रात को ही पता चला मुझे कि उन्हें रिश्ते की कितनी रिस्पेक्ट है। इतना बोलकर अनाही उसके साइड से कैबिन में जाने लगी, तो रूहान ने एकदम से उसकी बाजू थाम ली और उसे अपने करीब कर लिया, इतने करीब कि अनाही की नाक रूहान की नाक से टच हो रही थी। रूहान ने फिर बिल्कुल किसी घायल शेर की तरह गुर्राते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर पर जाने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको कितनी रिस्पेक्ट से देखता हूँ कि आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और रही बात रिश्ते की, तो मैंने नहीं कहा आपको इस रिश्ते में रहो, मैं आज भी आपको ऑफर देता हूँ, अभी के अभी मुझे डाइवोर्स दो और निकल जाओ यहाँ से। अनाही और भी ज्यादा डर चुकी थी रूहान के इस गुस्से से, वो अपने कांपते हुए होठों से बोली, रूहान जी, मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। रूहान ने एक नज़र अपने हाथ को देखकर से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, कभी मेरी नज़रों से शिकायत मत करना, मैं नशे की हालत में था, इसलिए मैंने आपसे कहा था, मेरे प्राइवेट स्पेस में आप जाकर भी नहीं रह पाएंगे, आपको ही शौक चढ़ा है मेरी देखभाल करने का, मैं सामने से आपको इनवाइट नहीं करता हूँ। इतना बोलकर रूहान अपने कैबिन में चला गया, तो वही अनाही बिल्कुल रबड़ी रह चुकी थी। उसने तो सोचा ही नहीं कि उसके बालकनी भेजने के पीछे भी कोई कारण हो सकता है। अनाही ने फिर अपने माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए कहा, इन मर्दों को समझना इतना मुश्किल है, और बोलते हैं नहीं, औरतों को नहीं समझ सकते, वो क्या चाहते हैं ये नहीं समझ सकते, मीम वायरल किया जा रहा है कि आखिर औरत को चाहिए क्या। अरे मैं पूछती हूँ, मेरे मर्द को क्या चाहिए? हद होती है। इन्हें मेरी देखभाल करने से दिक्कत है या अपने बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा है? और कैरेक्टर, मैंने तो उनके कैरेक्टर को कुछ कहा भी नहीं, इसके बावजूद उन्हें लगता है कि मैं उनके कैरेक्टर की बात कर रही थी, पर मैं अपने साथ की जा रही बदतमीजी की बात कर रही थी। हाँ, किसी हद तक मैं गलत हो सकती हूँ कि एक पत्नी पर पति का हक होता है, लेकिन वो तभी होता है जब वो पत्नी देना चाहे, और मैं इतनी जल्दी खुद को किसी के सामने सौंप नहीं सकती हूँ। इतनी सती सावित्री नहीं हूँ। अनाही खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन में चली गई, क्योंकि आज वेदांत की जगह पूरा काम उसे संभालना था, तो उसके पास ऑफिस का काम भी कुछ ज्यादा ही था। वही रूहान अपने कैबिन की चेयर पर बैठकर आंखें बंद किए अनाही के बारे में सोच रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैडम जी सच में चली गई तो? ये सोचने भर से उसका हलक सूख रहा था कि नहीं चली जाएगी तो उसका क्या होगा। उसकी शादी को आज आठवां दिन चल रहा था। उसने अपनी उंगलियों पर गिन के रखे थे अनाही के साथ बिताए पल। रूहान ने अपने होठों को गोल करते हुए एक लंबी सांस छोड़कर कहा, अगर आठवें दिन मेरा ये हाल है तो अगर ये पूरे महीने मेरे साथ रहेंगे तो उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है शायद अभी चली जाए। चले जाने के नाम से फिर से रूहान का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, लेकिन एक मिनट, ऐसे कैसे जा सकती है? निमानी परिवार का नाम भी तो मिट्टी में मिल जाएगा कि वो अपनी बहू को नहीं संभाल पाए। क्या फिर लोग मुझमें कमी निकालेंगे कि मैं अपनी पत्नी के लायक नहीं बन पाया? पर कहीं ना कहीं ये सही भी है, मैं उनके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। रूहान खुद में ही पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहा था। थक कर उसके पास एक ही इलाज था, और वो था अपना काम करना, इसलिए वो भी काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ वेदांत की गाड़ी मुंबई के सबसे आलीशान कॉलेज के सामने जाकर रुकी। वेदांत की गाड़ी देखकर कॉलेज के गेट पर खड़े गार्ड तुरंत ही एक्शन में आ चुके थे। उनमें से एक दौड़ता हुआ अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में गया। प्रिंसिपल जो अपने काम में लगे थे, उसे गार्ड को ऐसे आता देखकर उन्होंने उसे फटकार लगाते हुए कहा, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? आने से पहले नॉक किया जाता है? उस बॉडीगार्ड ने सर झुकाकर कहा, माफ करना सर, खूब वेदांत कर आए हैं, आज बिना बताए आए हैं। कॉलेज में कोई तैयारी नहीं है और लंच ब्रेक अभी अभी खत्म हुआ है, तो सब बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं, बस इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने आया था। वेदांत का नाम सुनकर प्रिंसिपल तुरंत ही चेयर से खड़े हो चुके थे और उनका चेहरा हल्का सफ़ेद पड़ गया था। उन्हें काफ़ी डर लग रहा था वेदांत के ऐसे अचानक आने से। कहीं उनके कॉलेज ने कुछ गलत तो नहीं किया? वो तुरंत ही अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, सारे स्टाफ को अलर्ट करो और कहो कि सब अपनी अपनी क्लास अटेंड करें। कोई भी स्टाफ रूम में नज़र नहीं आना चाहिए मुझे। और प्लेग्राउंड को भी खाली करवाओ, मैं वेदांत सर से मिलता हूँ।